शौर्य गाथा।
श्रोताओं, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहर दादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में ईरान के पहले राष्ट्रपति बनी सदर की देश में फूट डालने और ईरान पर थोपी गई जंग के पहले साल में ईरान के सैन्य स्तंभों को असंगठित करने की कोशिश पर चर्चा करेंगे।
वर्ष 1980 में इराक के सद्दाम शासन के ईरान पर अतिक्रमण के पहले ही साल ईरानी फोर्सेस और स्वयंसेवी बल के ऐतिहासिक प्रतिरोध ने बासी शासन की सेना को ईरान के बहुत भीतर आने से रोक दिया। हालांकि सद्दाम की सेना ईरान के दक्षिण और पश्चिम के कुछ शहरों तथा ईरान की हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि का अतिग्रहण कर चुकी थी, लेकिन ईरानी फोर्सेज और स्वयंसेवी बल की दृढ़ता ने देश के भीतर बासी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी तरह ईरानी फोर्सेज ने अतिग्रहित इलाकों को बचाने के लिए रणनीति बनाई। जिस समय इराक के तानाशाह सद्दाम ने ईरान पर हमला किया, ईरान में इस्लामी क्रांति को सफल हुए केवल 19 महीने गुजरे थे और नवस्थापित इस्लामी व्यवस्था 2500 साल पुरानी शाही व्यवस्था के पतन के बाद प्रशासनिक तंत्रों को मजबूत करने में जुटी हुई थी।
इस्लामिक क्रांति के दुश्मनों ने ईरान के भीतर की डामाडोल स्थिति की वजह से सद्दाम को ईरान पर अतिक्रमण के लिए उकसाया ताकि इस्लामिक क्रांति व्यवस्था गिर जाए। इस साजिश का रचनाकार अमेरिका था, जिसके हाथ से ईरान में शाही शासन के पतन और इस्लामिक क्रांति के सफल होने से रणनीतिक दृष्टि से बहुत अहम फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक घटक चला गया था। अमेरिका की साजिश ईरान की सीमाओं से बाहर सीमित नहीं थी, बल्कि साजिश की जंजीर की कड़ी ईरान के भीतर भी मौजूद थी। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर इमाम खुमैनी का अनुसरण करने वालों छात्रों द्वारा नियंत्रण से इस साजिश के एक भाग का पर्दाफाश हुआ, जिसे ईरान के क्रांतिकारी व क्रांति की वफादार फोर्स ने नाकाम बना दिया। ईरान में अमेरिकी दूतावास बाद में जासूसी के अड्डे के नाम से कुख्यात हुआ। ईरान का पहला राष्ट्रपति बनी सदर भी उन्हीं लोगों में था जिसने इमाम खुमैनी से दूरी बनाई और इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ अमेरिकी साजिश के जाल में फंसा और इस तरह वो क्रांति और उसकी आकांक्षाओं से दूर तथा क्रांति विरोधी प्रक्रिया के निकट हो गया।
बनी सदर ही सारी फोर्सेस का प्रमुख था और वो सेना तथा क्रांतिकारी संगठनों के बीच फूट डालने में लगा हुआ था। सद्दाम के अतिक्रमण के संबंध में उसकी नीतियों की वजह से सेना और क्रांतिकारी संगठनों के बीच गहरे मतभेद पैदा हुए और बासी सेना से निपटने के लिए ईरान की पूरी सैन्य क्षमता के इस्तेमाल में कठिनाई पैदा हुई। ईरानी सेना इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद कुछ सैन्य कमांडरों के फरार होने की वजह से उत्पन्न हालात से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी और क्रांति के बाद के हालात से समन्वित नहीं हो सकी थी। ईरान के राजनीतिक व सैन्य ढांचे में मूलभूत बदलाव और उसके स्वाभाविक परिणाम की वजह से राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सैन्य बल भी असहज महसूस कर रहा था। सेना के वजूद के जरूरी रहने के संबंध में संदेह ईरान के सैन्य उपकरणों की खरीदारी के मार्ग में रुकावट पैदा करने की कोशिश तथा क्रांति के विरोधियों की ओर से सेना को भंग करने के नारे की वजह से ईरानी सेना की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। इस्लामी क्रांति से पहले ईरान ने अमेरिका के साथ एक बड़ा सैन्य सौदा किया था जो तत्कालीन आधुनिक लड़ाकू विमान F-14 की खरीदारी का था, जिसे अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं बेचा था। क्रांति के बाद कुछ अधिकारी सैन्य समझौतों के रद्द करने और सेना को भंग करने का आग्रह कर रहे थे। ईरान के राजनीतिक मंच पर इस तरह के माहौल के साथ साथ ईरान के कुछ क्षेत्रों जैसे कुर्दिस्तान, खुजिस्तान और बलूचिस्तान में क्रांति के विरोधी सशस्त्र तत्वों से निपटने की ज़रूरत सामने आई। इस बीच आंतरिक अशांति से निपटने के लिए इमाम खुमैनी के निर्देश से क्रांतिकारी विशेषताओं के साथ इस्लामी क्रांति संरक्षक बल IRGC का मूल स्वरूप गठित हुआ और मई 1979 में क्रांति परिषद में IRGC के गठन के बिल के पारित होने के साथ ही इस सैन्य संगठन को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई।
IRGC को इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा की जिम्मेदारी मिली और इसके लिए वो विभिन्न मंचों पर सक्रिय हुई और उसने क्रांति विरोधी तत्वों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रक्रिया में इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सेना को बाकी रखने पर बल दिया और इस सैन्य संगठन का हर तरह का समर्थन करने के साथ ही सेना की स्थिति की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक समिति गठित की। इस कदम के साथ साथ ईरान के साथ अमेरिका के संभावित टकराव और विश्व साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के भविष्य के मद्देनज़र इमाम खुमैनी ने IRGC को हर तरह से मजबूती प्रदान करने के साथ फरमाया, जितना भी चीखना चिल्लाना है अमेरिका पर चिल्लाइए, जो भी प्रदर्शन करना है अमेरिका के खिलाफ कीजिए, अपनी सेनाओं को सशस्त्र कीजिए, सैन्य ट्रेनिंग लीजिए और दोस्तों को ट्रेनिंग दीजिए, इस्लामी शासन को सैन्य दृष्टि से पूरी तरह ट्रेन होना चाहिए।
इमाम खुमैनी की ये बात स्वयंसेवी बल बसीज के गठित होने और उसके IRGC से ट्रेनिंग पाने का आधार बनी। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई ने, जो उस समय इमाम खुमैनी की तरफ से IRGC में प्रतिनिधि थे, एक इंटरव्यू में कहा, भाइयों और बहनों को उन केंद्रों में व्यापक सैन्य ट्रेनिंग मिलेगी जिन केंद्रों को IRGC निर्धारित करेगी। इस तरह इराक के हमले के अवसर पर इस्लामी गणतंत्र व्यवस्था के सैन्य बल का स्वरूप इस तरह का था कि एक ओर सेना पारंपरिक सैन्य बल के रूप में मौजूद थी तो दूसरी ओर IRGC व स्वयंसेवी बल बसीज मौजूद था। पारंपरिक सेना आंतरिक मामलों, खासतौर पर जुलाई 1980 के नकाब नामी विद्रोह की नाकामी के मानसिक व भावनात्मक प्रभाव में उलझी हुई थी। ये विद्रोह ईरान पर इराक के हमले शुरू होने से 40 दिन पहले नाकाम हुआ था। दूसरी ओर IRGC और क्रांतिकारी बल क्षमता के बावजूद पर्याप्त मात्रा में सैन्य उपकरण के अभाव की वजह से ईरान की हर तरह से रक्षा करने की जिम्मेदारी कबूल करने की हद तक सक्षम नहीं हुए थे।
ईरान की रक्षा फोर्सेस का स्वरूप पारंपरिक सेना IRGC और स्वयंसेवी बल बसीज पर आधारित था। यह स्वरूप कुछ आंतरिक संकटों से निपटने में सफल रहा, लेकिन धूर्त बनी सद्र की साजिश की वजह से इन फोर्सेस के बीच व्यापक सहयोग नहीं हो पा रहा था। सेना में क्रांतिकारी भावना रखने वाले सैनिक मौजूद थे और उन्होंने क्रांतिकारी बल और स्वयंसेवी बल को ट्रेनिंग व सशस्त्र करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन ये कदम पदक्रम के अनुसार व सुव्यवस्थित रूप में नहीं था। देश के पारंपरिक सैन्य तंत्र की उपयोगिता के अभाव और इसी तरह फोर्सेस को काम में लाने वाले एक सक्षम व केंद्रित कमान के न होने की वजह से ईरान पर इराक के हमले के आरंभ में नवस्थापित क्रांतिकारी संगठनों व सैन्य बलों ने न्यूनतम सैन्य सुविधाओं के साथ सबसे ज़्यादा प्रतिरोध व दृढ़ता का प्रदर्शन किया।
इसकी एक मिसाल इराक की थल सेना और बख्तर बंद टुकड़ी के मुकाबले में खुर्रम शहर को बचाने वालों का 34 दिनों तक प्रतिरोध था। ये संकटमय दौर स्वयंसेवी बल बसीच के प्रतिरोध के जरिए गुजर गया और अंततः दुश्मन, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं थी, अपनी मर्जी की शांति की प्राप्ति की उम्मीद में ईरान के अतिग्रहित इलाकों में ठहर गया। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ इराक की थोपी गई जंग के इस दौर के बारे में अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। सुनना ना भूलिएगा।